ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृतार्थसिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरतिष्ठ हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम मैं सर्वप्रथम मैं पहले अपने श्री श्री गुरुदेव जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद से संभक्ति सिद्ध प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अपने हृदय की पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात उनसे जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के शिष्य और हमारे गुरु जी से जिन्होंने संन्यास लिया भक्ति वेदांत स्वामी जी, मैं उनको अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ। यद्यपि हम लोग संन्यास के गुरु भाई हैं तो भी मैं उनको अपना शिक्षा गुरु मानता हूँ। मैंने बहुत उनकी सेवा की थी, जब इस्कॉन का भी जन्म नहीं हुआ था तब से, जब वो भारतवर्ष में पहले आए तो संन्यास हमने उनसे कहा, उन्होंने संन्यास लिया गुरु जी से। मैंने उनकी सारी पुस्तकें सारी चीज़ें दिन रात सेवा करके उनको अमेरिका में भेजवाया। उनकी सारी मूर्तियाँ जिन्होंने प्रतिष्ठा की इधर, मृदंग खोल करताल, यहाँ तक कि उनको मिठाई बड़ी अच्छी लगती थी, मैं इनके लिए मिठाई पेड़ा जो वृंदावन का मशहूर और मथुरा का है मैंने उनको भेजवाया, 5-5 किलो, 10-10 किलो, 15-15 किलो उनको भेजवाया। हमारे पास में वो सब समय 15 दिन के अंतर में पत्र देते थे कि आज इतना प्रचार हुआ, आज ऐसे प्रचार हुआ। मैं समुद्र के किनारे करताल बजाते हुए हरे कृष्ण और श्री कृष्ण चैतन्य ये कीर्तन करता था। धीरे धीरे कुछ अब लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जब वो बड़े प्रसन्न होकर के मुझको लिखा जी इस्कॉन की स्थापना हो गई न्यूयॉर्क में या और सब जगहों में प्रचार हो रहा है, सब में बड़े प्रसन्न होकर के हमको लिखते। इस तरह से अपने अंतिम समय में हमको उन्होंने बुलाया, जबकि वो बोल नहीं सकते थे, दूसरे दिन वो चले जाना है, उस दिन उनको हमको बुलाया। उसके पहले भी मैं उनके पास नहीं जाता, उन्होंने अपने हाथों में मेरा हाथ लेकर के उन्होंने कहा अब समय जा रहा हूं, हमारा समाधि तुम अपने हाथों से देना, दूसरा कोई नहीं देगा। हमारा जो विरहोत्सव होगा, जो मीटिंग होगी, सारी व्यवस्था तुम करना। मैं इन बच्चों को मैं विदेशों से ले आया हूं, मैं जो देना नहीं देना चाहता था वो नहीं दे सका। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन बच्चों को भी आप सहायता करें भविष्य में, इनको भगवतीय ज्ञान, भागवत का तत्व ये सब इन लोगों को बतलाना। जब भी इन पर कोई बात हो, प्रॉब्लम हो, आप इनको सहायता कर। मैंने कहा जो सहर्ष मुझको स्वीकार है, मैं आपकी आदेश को जीवन भर पालन करूंगा। मैंने किया भी, अभी तक भी उसी मूड में हूँ। कि जो जो आदेश हमको दे गए हैं वैष्णव का आदेश पालन करना चाहिए, वैष्णव गुरु हैं। इसलिए हमने वही किया, अभी भी वही कर रहे हैं। हम कोई नई चीज देने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने जगत में अपने गुरु परंपरा से गीता भागवत इत्यादि के तत्व उन्होंने जगत में वितरण किया, कोई नई चीज नहीं उन्होंने दी। कृष्ण भी कोई नई चीज नहीं दिए, उन्होंने हजारों लाखों वर्ष पहले जो गीता सूर्य को बतलाया था वही गीता तो अर्जुन को दिया, नई चीज कहां हुई? वेद उपनिषद शास्त्र ये नई नहीं है, उन्हीं को पुराण कहा जाता है क्योंकि वो नित्य है, नवीन है, कोई नई चीज नहीं। तो स्वामी जी कोई नई चीज देने के लिए अपने बुद्धि से निकाल करके नहीं देने आए थे, बल्कि भागवत और गीता पर उन्होंने टीका टिप्पणी भी करके उसको प्रकाशित करके विश्व की कितनी भाषाओं में उन्होंने प्रचार किया, कम से कम तो 40-50 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में और यूरोप की, इंग्लैंड की, अमेरिका की भाषाओं में प्रचार करके थोड़े दिन में 10-12 वर्ष के अंदर में उन्होंने विश्व में सर्वत्र मंदिर स्थापन किए, ग्रंथों का प्रकाशन किया। ये साधारण आदमी का काम नहीं, हम लोगों का धर्म असल में प्रेम है। सीखो पहले से माता पिता से प्रेम करना सीखो। जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, उनके बातों को नहीं सुन सकता, तो भगवान को कहां तक पहुंचेगा? माता पिता तो पहले गुरु हैं, इसके बाद में और सब बातें हैं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। गीता में उन्होंने क्या कहा ये सब हम देखेंगे। आज हम गीता पर थोड़ा सा प्रवचन देंगे। गीता का पहला जो जहां से उन्होंने गीता में आरंभ किया है उस पर थोड़ा सा हम विचार करते हैं, इसके बाद में भागवत की बातें हम बतलाएंगे। कुछ दिन रहना है इधर में, धीरे धीरे बतलाएंगे। स्वामी जी का क्या मिशन था? चैतन्य महाप्रभु इस जगत में आए थे, वो कृष्ण थे। चैतन्य महाप्रभु कोई ब्राह्मण के बालक और ये सब नहीं थे, वो स्वयं कृष्ण थे। जगत पर कृपा करने के लिए उन्होंने राधा जी का भी मूड लिया भाव, और उनके ऊपर का अंग कांति ग्रहण किया। किस लिए? गोलोक का जो प्रेम है जगत में उतारेंगे और सबको वितरण करेंगे। यदि ऐसा नहीं करते तो नहीं कर सकते थे। कृष्ण की कृपा और उसमें राधा जी की कृपा मिल गई, दो हो गया। तब ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा आई, दोनों की मिली हुई कृपा, अकेले नहीं। इसलिए कृष्ण और राधा जी की कृपा से भी महाप्रभु जी की कृपा बड़ी है। आ रहा है समझ में मैं क्या कह रहा हूं? कृष्ण की कृपा बहुत अगाध अनंत है और उसमें राधा जी की कृपा और मिल गई, राधा जी की ब्यूटी मिल गई, राधा जी का मूड मिल गया, राधा जी बड़ी कृपालु हैं। कृष्ण किसी को छोड़ सकते हैं? और कृष्ण का है जितना कोई उनको प्रेम करेगा उतना ही वो दूसरों से प्रेम करेंगे, वजन करके, कांटे पर तौल करके। जे जथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जितना ही एक पैसे का भजन करेगा उसको एक पैसे का प्रेम देंगे, अधिक नहीं देंगे। जो आठाने का प्रेम करता है अठन्नी भर उसको प्रेम देंगे, वजन करके, कम नहीं होगा, अधिक नहीं होगा। जो जितना प्रेम करेगा उतना उसको वैसे देंगे। यदि कोई ये कहेगा कि आप ब्रह्म हैं, आपका रूप नहीं है, तो उसको वैसे ही करेंगे। जो राम के रूप में उनका भजन करना चाहता है तो राम के रूप में ही उसकी इच्छा को पूर्ण करें। यदि नारायण का भजन करना चाहता है तो उसको नारायण जैसा ही प्रेम देंगे। यदि कोई द्वारकाधीश का भजन करता है तो द्वारकाधीश बन करके उसकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। यदि कोई श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन हो करके भजन करना चाहे उसको उसी रूप में देंगे, कम न देंगे न अधिक देंगे। किंतु राधा जी उनसे अधिक दयालु है। क्यों? अपने प्रेम से, अपने प्रेममय सेवा से कृष्ण को भी कंट्रोल कर लेती हैं, कृष्ण को वशीभूत कर लेती हैं। यह प्रेम है, प्रेम राधा और कृष्ण दोनों पर अपना प्रभाव रखता है। वो प्रभु हो जाता है प्रेम और दोनों को नचाता है, अपने भी नृत्य करता है। ऐसा ये प्रेम चीज है। कृष्ण प्रेम स्वरूप हैं, राधा जी प्रेम स्वरूप हैं, इसलिए वही प्रेम को देने के लिए इस जगत में आए थे और उसी प्रेम को सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज जी को दिया। यहीं से आरंभ होता है, उसी प्रेम को पीछे से हमारे रूप सनातन जी महाप्रभु जी आए, रूप सनातन जी ने दिया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिया, कृष्णदास कविराज गोस्वामी परंपरा में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर जी आए, इसके बाद में उन्हीं की परंपरा में हमारे गुरु जी और ये स्वामी जी, दोनों भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य हैं। तो ये लोग उसी चीज को देने के लिए आए जो चैतन्य महाप्रभु जी आए थे। यदि हमारे अंदर में प्रेम नहीं है, यदि हम कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते तो हम अपने आप में भी प्रेम नहीं हो सकता। महाप्रभु जी का तो ये विचार है, जितनी संसार में चीजें हैं वो कृष्ण से आई हैं, सबके प्रति प्रीति रखो, मैत्री का भाव रखो, मित्रता सख्य का भाव रखो, सभी कृष्ण के सेवक हैं, मानो और नहीं मानो, सभी कृष्णदास, जिवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, सभी का स्वरूप है, इसके अंदर में स्वरूप है, वो दास का स्वरूप है। गीता इस विषय की पहली पुस्तक है, फर्स्ट बुक ऑफ दिस नॉलेज एंड टीचिंग, पहली पुस्तक, और श्रीमद्भागवत कैसी पुस्तक है, पीएचडी डीलिट का ग्रेजुएशन की पुस्तक है। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले गीता का ट्रांसलेशन किया, मथुरा में बैठ करके कर रहे थे, भागवत का 3 वॉल्यूम मथुरा में और वृंदावन में रह करके उन्होंने करके छपवा करके, वही उनकी संपत्ति थी, लेकर के आए, कुछ एक कौड़ी भी पैसा नहीं उनके पास, बहुत कष्ट से, हम तो एरोप्लेन से आए हैं, हमारे लिए तो व्यवस्था उन्होंने कर दी, स्वामी जी ने, किंतु जिस समय आए थे उनके पास में एक कौड़ी छदाम नहीं था, एक पैसा भी उनके पास नहीं था, कपड़ा भी नहीं था, फटी हुई गीता की पुस्तकें और भागवत की 3 वॉल्यूम जो पहला और दूसरा और तीसरा कैंटो उन्होंने छपवाया था उस समय, वो भी साधारण कागज में, साधारण सा साधारण, कोई उसमें आकर्षण नहीं, वही संपत्ति लेकर और करताल लेकर के आए, पीछे से उपनिषद इत्यादि हमने उनको भेजे, यही संपत्ति थी। तो वो क्या प्रचार किया, जो चैतन्य महाप्रभु देने के लिए आए थे जीवों को, ये जीवों का स्वरूप कृष्ण का दास है, यह शरीर हम नहीं है, यही देने के लिए, हम लोग भी उसी चीज को देने के लिए आए हैं, दूसरे को उसी लाइन में उन्होंने जो कुछ कहा उसी को पुनः हम लोग देने के लिए आए हैं, दूसरी कोई नई चीज नहीं, उसी लाइन में। कुछ लोग कहते हैं जैसे आपका ये प्रचार और स्वामी जी का प्रचार एक नहीं था, ये एकदम बहुत गलत था, ऐसा नहीं, महाप्रभु जी का प्रचार और रूप सनातन का एक प्रचार था, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी विचार वही था, भक्ति विनोद ठाकुर का भी विचार था, हमारी गुरु परंपरा का सबका विचार एक है, सभी जीव भगवान के दास हैं, यह शरीर हम नहीं हैं। जब यह धर्म जो सभी स्वरूपतः कृष्ण के दास है, ये धीरे 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 सतयुग में पूर्ण रूप से था, त्रेता में आधा लोग असुर जैसे हो गए और त्रेता में और भी लुप्त होने लग गया, द्वापर के अंत में तो इतना हो गया कि सभी लोग भूल गए, खाना पीना मौज करना, ये पृथ्वी मेरी है, ये तुम्हारा है, ये भी मेरी हो जाएगी, ये पुत्र मेरे हैं, मेरी स्त्री मेरी है, जहां कोई सुंदर लड़की देखा उसको ले लिया, पांडवों की पत्नी द्रौपदी बड़ी सुंदरी, शीतोषामली बड़ी सुंदरी और बड़ी गुणवती, जयद्रथ उसको भगाने लेके गया, समझ रहे हैं, उसको हरण किया, उसको नंगी सभा में नंगी करने की चेष्टा की, इनकी सारी दौलत हरण कर ली। वो समझते थे कि ये दुनिया मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है, स्वर्ग और मोक्ष और वैकुंठ ये सब कुछ नहीं, ये सब गलत बात, जीवात्मा और शरीर दोनों एक चीज है, ये समझने लगे और इसी के लिए लड़ने लगे और आत्मधर्म भूल गया। गीता में कहा है ना, धर्म संस्थापनार्थाय स्वाम संभवामि, उसका पहले क्या है, जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। क्या अर्थ है इसका, तात्पर्य जदा जदा, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, ग्लानि माने हानि होती है, धर्म कम होने लगता है और धर्म बढ़ने लगता है, और धर्म कौन करता है, असुर लोग, और धर्म कौन करता है, जो भक्त लोग हैं, तो जब भक्त लोग असुरों के दबाव से इतने अधिक दबने लगते हैं कि वो अपने स्वच्छंदता से धर्म का निर्वाह नहीं कर सकते, पहले असुर किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, जो लोग भगवान का भजन करते हैं, जो जानते हैं कि जीवात्मा शरीर से अलग है, अभी हम लोग माया में बद्ध हैं, हमको माया से निकल करके, जन्म मृत्यु से निकल करके भगवान का भजन करना चाहिए, ये तो देवता है। और जो लोग भगवान को नहीं मानते, शरीर ही मैं हूं, मैं उसका पति हूं, वो मेरी पत्नी है, वो मेरे बेटे हैं, ये पृथ्वी मेरी है, मेरे भोग की चीज है, भगवान नहीं है, ये लोग असुर होते हैं। जिस समय कृष्ण पधारे थे उसके पहले से ही कंस भगवान को नहीं मानता था, जरासंध, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन ये सब लोग एक तरह से अशुभ प्रकृति के लोग थे, आत्मा से कोई संबंध नहीं, खाओ पियो और मौज करो, एक ड्रिंक एंड बी मेल, बस खाओ पियो मौज करो। कृष्ण ने देखा कि ये पृथ्वी तो रसातल को जाएगी, इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म क्या, मैं भगवान का दास हूं, जीव मात्र भगवान का दास है, शरीर ये छोड़ना पड़ेगा आज न कल, आज हम बच्चे हैं, कल बड़े होंगे, परसों बूढ़े होंगे और इसके बाद में मर जाएंगे, सारी पृथ्वी धरी रह जाएगी, एक सुई का नोक भी नहीं ले जाना होगा। ये लोग उस समय भूल गए, आत्मधर्म भूल गए, सभी लोग बस संसार में रमने लगे। कृष्ण ने देखा ये तो बहुत गड़बड़ी है, इसलिए ब्रह्मा जी की, शंकर जी की और गाय की स्तुति स्तव सुन करके कृष्ण ने इस जगत में आना स्वीकार किया। तो धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए और दैत्यों को वध करने के लिए वो आए। तो धर्म क्या, आत्मधर्म, जो स्वामी जी देने के लिए आए हैं, हम लोग उसी के संबंध में देने के लिए, जिसको वेद में, उपनिषद में, गीता में, वेदांत में, शास्त्र में कहा गया, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, शरीर का जन्म मरण है, आत्मा का जन्म मरण नहीं है, इस जगत में हम भगवान का भजन करने के लिए, उनको जानने के लिए आए हैं, भोग करने के लिए नहीं आए हैं। जो भोग करना चाहते हैं वो असुर लोग हैं, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो करते हैं वो सब असुर हैं, और जो भगवान की सेवा मान करके संसार करते हैं वो सब देवता और भक्त हैं, इनको बचाने के लिए, जैसे पांडव लोग भगवान के सेवक थे, ये लोग भगवान का भजन करना चाहते थे, उनकी सारी संपत्ति हड़प ली, उनकी स्त्री को भी जीत लिया जुए में, और पांडवों को तबाह कर दिया, पांडवों को मार डालना चाहते थे, ये आत्मधर्म का विरुद्ध है, ये शांतनु जी एक राजा थे, शांतनु, उनके पिता, उनके पुत्र हुए भीष्म पितामह जी, उन्होंने शादी नहीं की। शांतनु जी ने दूसरी शादी की, उसके लड़के हुए विचित्र वीर्य और चित्रांगद, उनमें तो एक मर गया, दूसरे की ओर दो पुत्र हुए, एक धृतराष्ट्र और एक पांडु। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था, इसलिए राजगद्दी का अधिकारी नहीं हुआ, इसलिए छोटा भाई पांडु राजगद्दी पर बैठा। जब इनके पांच पुत्र हुए और उसके 100 लड़के हुए, तो पांडु जी भी इस जगत से चले गए। उस समय बच्चे छोटे थे, धृतराष्ट्र थे अभी जीवित, उन्होंने इन बच्चों को पाला पोसा, सिखाया, पढ़ाया। जब ये लोग बड़े हो गए, दोनों काफी समझने लगे और 20-25 वर्ष के हो गए, तो भीष्म पितामह जी ने कहा कि भाई इनका अलग अलग राज्य दे दो, बांट दो, आधा आधा पांडवों को दे दो और आधा उनको दे दो, क्योंकि दोनों ही अधिकारी हो। दुर्योधन ने नहीं माना, मैं कहा सुई भर नोक वीर नहीं देंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह से यह आरंभ हुआ, होते होते धीरे धीरे महाभारत युद्ध हुआ। इसी के लिए सारी पृथ्वी दो भागों में बट गई। कुछ लोग जो धर्म को मानने वाले थे वो कम थे, और दुष्ट लोग जो असुर थे वे अधिक थे, उन्होंने दुर्योधन का पक्ष लिया, और जो संत स्वभाव के जो थे इनका पक्ष लिया। कृष्ण ने इनका स्वयं पक्ष लिया। ये दुर्योधन की लड़की की शादी अर्जुन कृष्ण के पुत्र से हुई थी, इसलिए उनसे भी संबंध था, और कृष्ण की बहन कृष्ण उनसे अर्जुन से शादी थी, इसलिए इनसे भी संबंध है, दोनों कुलों से संबंध है, कौरवों से भी पांडवों से भी। दोनों बुलाने के लिए गए कृष्ण को, ये हमारे तरफ से लड़ना, वो कहा जी हमारे तरफ से लड़ना। कृष्ण सोए हुए थे सवेरे का समय, कृष्ण सो करके उठा और उठ करके देखते हैं कि सामने में दुर्योधन अर्जुन बैठा है, पैर की तरफ में और सिर की तरफ में दुर्योधन बैठा, क्योंकि राजा है ना, उसको भी माने मैं राजा हूं, और अर्जुन को भी माने कि मैं सेवक हूं अर्जुन कृष्ण का, इसलिए वो पैर के तरफ में बैठे और दुर्योधन सिर की तरफ में बैठा। कृष्ण ने कहा अर्जुन अरे तुम आया किस लिए, कैसे आया? इतने दुर्योधन ने कहा मैं पहले से आया हूं, आई हैव कम फर्स्ट, ही टोल्ड दुर्योधन, मैं पहले आया हूं। कहिए क्या बात है? महाभारत का युद्ध होने जा रहा है, एक तरफ में पांडव एक तरफ में हम लोग, आप हमारे पक्ष से चलिए। अर्जुन अच्छा अच्छा ठीक है मैं चलूंगा, मैं तुम्हारे तरफ से लड़ूंगा नहीं, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं लूंगा, और एक तरफ में हमारी सारी सेनाएं रहेंगी वो लड़ेंगी, तुम किसको लेना चाहता है? उन्होंने कहा जी अब आप लड़ेंगे नहीं तो आपको लेकर के क्या होगा? इसलिए हमारी सेना अपनी सेना दे दी है, उन्होंने सारी सेना अपनी दे दी। फिर अर्जुन से बोले जी अब प्रभु मैं तो बच गया, नहीं तो यदि आपको ले लेता तो मैं मर जाता। हम सेना नहीं चाहते हैं, हम कोई धन संपत्ति नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं, आपको चाहते हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, हमारे रथ पर मनोरथ पर आप बैठे रहेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा, जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। और जब दोनों में युद्ध आरंभ हुआ, अर्जुन को ने कहा अरे कृष्ण बीच में रथ ले चलो, देखो त्रिभुवन के मालिक प्रभु समस्त विश्व ब्रह्मांड में समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर परमेश्वर मूल, और उनको अर्जुन कहा राज्य तुम बीच में हमारे रथ को ले चलो, एक सारथी जैसा। कृष्ण प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं, प्रेम से वशीभूत होकर के रथ वहां पर ले गए। अर्जुन ने देखा अरे घर में हमारे जितने भाई हैं वो सब खड़े हैं, भीष्म पितामह जी, द्रोण, ये सब खड़े हैं, हमारे गुरु और हमारे पितामह जी, और इधर में हमारा पुत्र अभिमन्यु, और इधर में छोटे छोटे और सब लोग भीम अर्जुन, ये सब राज्य के लिए लड़ रहे हैं। मैं राज्य के लिए नहीं लड़ता, भीख मांग करके जीवन निर्वाह करना उचित है, किंतु मैं अपने भाई सगे संबंधी पितामह गुरुजन को मैं मारना नहीं चाहता। धनुष छोड़ दिया, बाण छोड़ दिए, कहिए नहीं, अब आप जैसा कहिए, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए, लड़ना चाहिए या नहीं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, बड़े पंडित की बात कह रहा है, समझ जाए पंडित, और मूर्खों की तरह में बोल रहा है, तुमने संसार को पैदा किया है, तुमने तो किया नहीं, पैदा तो मैंने किया, तुम ये समझ रहा कि ये बेटे हमारे हैं, तुम सोच लेता है जैसे मैं युद्ध नहीं करूंगा तो युद्ध बंद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं, हम नहीं कहेंगे तो भी तू लड़ेगा अपने स्वभाव से, इसलिए जो मैं कहता हूं करो, धर्म के लिए उठ करके खड़े हो, आत्मधर्म लुप्त हो जा रहा है पृथ्वी से, और आस्तिक विचार चल रहे हैं, ये अशुभ विचार वाले हैं, इनको मैंने पहले ही से ही मार रखा है, सुनो। इसके बाद में गीता आरंभ किया, किस लिए गीता, क्या चीज है गीता, गीता उपनिषद वेद, इसलिए इसको गीता उपनिषद कहा गया, जो स्वामी जी की पुस्तक गीता पढ़ी होगी उसमें ये सब चीजें लिखी हैं, गीता उपनिषद है। उपनिषद कहते हैं किसको, वह शास्त्र उपनिषद जिसे भगवान के निकट जाया जा सकता है, भगवान को समझा जा सकता है, उसको कहते हैं उपनिषद, जिसमें आत्मा परमात्मा जीवात्मा और जगत जीव इत्यादि के संबंध में बतलाया गया है, और उस विद्या को जानने से सहजी भगवान को पाया जा सकता है। उपनिषद मीन्स आर एक्सप्लेन उपनिषद, वट इज उपनिषद, ओप निषद, ओप माने नियरर, निषद द विद्या बाई विच वी कैन गो टू नियरर टू कृष्ण, दैट इज उपनिषद, वेद टू नो, वट टू नो, हु इज कृष्ण, हु एम आई, हु इज जी, हु इज सोल, वट इज माया, टू नो ऑल इज वेद, द एसेंस ऑफ ऑल दैट थिंग इज गीता। गीता उन्होंने आरंभ किया, सबसे पहले उन्होंने बतलाया, क्या बतलाया, अर्जुन यह ज्ञान मैंने आज से करोड़ों वर्ष पहले सूर्य को दिया था, तुम भी थे हम भी थे, तुम भूल गया, मैं नहीं भूलता, जीवात्मा भूल जाएगी सब, इसलिए विद्या का लुप्त होना फिर अब तुमको मैं इस गीता को उपदेश बतला रहा हूं, नहीं नंखिदंति शास्त्राणी नहीं दंधति पावक न चैनं क्लेदेन तापो न शोषयत मारुत, यह शरीर एक कपड़ा है, कपड़ा फट जाएगा फिर दूसरा कपड़ा आ जाएगा, ऐसे ही जीवात्मा शरीर को धारण करता है और छोड़ देता है। इसको समझने के लिए उन्होंने 12 या 13 अध्याय में बतलाया, अक्षर ओम इति अक्षर, ओम जो है एक अक्षर ब्रह्म है, अक्षर ब्रह्म किसको कहते हैं, नक्षरति इति अक्षर, जिसका विनाश नहीं है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, जो सब समय एक समान रहता है, वो अक्षर है। वट इज अक्षर, इन नंबर सिक्स बर्थ, इन नंबर डाई, ऑलवेज इन द सेम पोजिशन, एटर्नल, उसको कहते हैं ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। उसके दो विभाग हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा कभी कभी अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है, इसको खर पुरुष कहते हैं, और जो जीवात्मा मुक्त है माया से, भगवान की सेवा में नियुक्त है, वो अक्षर ब्रह्म किंतु पार्टली है, वो पार्टली अक्षर ब्रह्म, और पूर्ण ब्रह्म कौन है, कृष्ण। इसलिए वहां पर बतलाया गया हरि ओम तत्सत, गीता में बतलाया गया, उपनिषद में बतलाया गया, हरि ओम तत् सत्, क्या मतलब? हरि ही ओम है, अक्षर। इनका कभी विनाश नहीं है, जन्म नहीं है। ये हरि कौन है? कृष्ण से लेकर के उनके जितने अवतार हैं ये सब हरि हैं। कृष्ण, राम, वामन, नृसिंहदेव, ये सभी नारायण, ये सभी हरि हैं। किंतु कृष्ण सबसे मूल है सबके। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसलिए अक्षर दो, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा में कृष्ण सर्वोत्तम और जो उनके अवतार हैं ये सब हुए। सत 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 माने जितने भी वैष्णव हैं गोलोक में, वृंदावन में, नंद, यशोदा, गोप, गोपी, वृंदावन धाम, ये तप सत हैं, क्योंकि वो भगवान के योग माया के द्वारा प्रकटित हैं। उनका भी जन्म मरण नहीं है। इस जगत में जितने भी वैष्णव हैं, तुलसी हैं, गंगा है, यमुना है, वृंदावन धाम है, ये तप सत है, सब सत हैं। इस तरह से ये सबको समझ करके सबका आदर करना है। इसलिए जो इनको नहीं जानते वो असुर हैं। और बतलाया, जग्यार्थात कर्मणो लोकाय मनत्र कर्म बंधन। भगवान के प्रीति के लिए सब कुछ करो, घर करो, विवाह शादी करो, भगवान की प्रीति के लिए दोनों मिलकर के भगवान की सेवा करो। विवाह करना बुरा नहीं है। क्यों? हम बद्ध जीव हैं, विवाह किया ठीक है। अब ये समझो कि पत्नी हमारी भगवान की सेवा के लिए है, हम भी भगवान की सेवा करेंगे, हमारे बच्चे भी भगवान की सेवा करेंगे। एक कुत्ते में, गधे में, हाथी में, सब में जो सम रूप से दर्शन करता है उसको कहते हैं समदर्शन। श्लोक क्या है? विद्या विनय संपन्न ब्रह्मणी गभिहस्तिने सुने चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। इसमें भी एक तृण में, गुल्म में, वृक्ष में, बाघ भालू में, सुअर में, गधे में, गाय में, हाथी में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, शूद्र में, ईसाई में, क्रिश्चियन में, बौद्ध में, सबको एक जैसा आत्मा है जो ऐसा देखता है, वो समदर्शी है। जो ये कहता है ये मेरा है, वो उसका मेरा है नहीं है, वो दूसरे का है। जो आत्मा को नहीं देख करके देखता है, शरीर को देखता है, वो क्या है? असुर है। एक समय की बात है, अष्टावक्र आठ अंगों से टेढ़े, खुबड़े, काले, कलूठे, दांत नहीं, टेढ़े मेढ़े, यहां कुबड़ इधर कुबड़, टेढ़ा पैर, बड़ी मुश्किल से हिमालय से चलते 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 राजा जनक उनकी राजधानी मिथिला में आए। उनको देख करके जितने वहां पर ब्रह्मज्ञानी सभासद सब हंस दिए। उन्होंने लठिया टेक दी और उस पर भार देकर के खड़े हो गए और उन्होंने भी ठठा ठठा करके बड़े जोरों से हंसने लग गए। राजा जनक और देख करके सभासद लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा, जी आप क्यों हंसते हैं? उन्होंने कहा, तुम किस लिए हंस रहे? उन्होंने, तुम्हारी अगली रूप देख करके, कुरूप देख करके हंस दिया हमने, इसलिए हंसे तो ठीक है। आप किस लिए हंसे महाराज? मैं इसलिए हंसा, मैं सुना था ये महाराज जनक के सभा में बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग हैं सब, जो ब्रह्म तत्व को जानते हैं, अजर अमर हैं। किंतु मैं यहाँ आया तो देखा ये सभी मोची चमार बैठे हुए हैं, जूता सिलाई करने वाले। ऐसा आपने क्यों कहा? यहाँ पर ज्ञानी लोग नहीं है, एक भी तो नहीं देखता। क्यों? ये सब हंस रहे हैं इस शरीर को, चमड़े को देख करके। ये काला चमड़ा है ना, इसके अंदर में आत्मा को नहीं देखते, इसलिए सब मोची हैं। तो जो आत्मा का विचार जिनको नहीं है, वो सभी काला चमड़ा है, टेढ़ा चमड़ा है, सीधा चमड़ा है, ये देखते हैं। ये तो आत्मा नहीं है, उसके अंदर में आत्मा है। इसलिए वंशास जीर्णानी जथा विहाय नमान गहनाति नरो प्राणी। यह शरीर पुराना हो जाएगा, दूसरा शरीर आएगा। शरीर कैसे पुराना होता है? कर्मों के वजह से। कर्म पुराना खत्म हो गया, बस चलना है, चलना है। बोरिया बांधना नहीं छोड़ना बांधना है, सबको छोड़ करके चलना है, खाली करके जाना पड़ेगा अकेले आत्मा। कहाँ जाना है वो भी पता नहीं, इसलिए जो कुछ करो भगवान के प्रति के लिए करो। कैसे हम जानेंगे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कृष्ण कहते हैं तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपतेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। Those who are tattvadarshi, you should go and take his shelter. उसके पास में जाओ, उसे पूछो। तत्त्वदर्शी नहीं होने से वो नहीं बदला सकेगा। तो तत्त्वदर्शी नहीं होने से कहेगा ये हमारा ग्रुप है ये तुम्हारा ग्रुप है, स्वामी जी ऐसा ग्रुप नहीं देखा, सिद्धांत सरस्वती जी ने नहीं देखा, व्यास जी ने नहीं देखा, सुखदेव गोस्वामी ने नहीं देखा, कृष्ण ने नहीं देखा, चैतन्य महाप्रभु जी ने ऐसा नहीं देखा। सबका आदर किया, हम लोगों को आदर करना सीखना चाहिए। तो तत्त्वदर्शी व्यक्ति नहीं रहेगा तो वो ये मेरा है ये तुम्हारा है ये करना बाध्य है उसके लिए, वो समझ नहीं सकता। इसलिए तत्त्वदर्शी गुरु के पास में जाओ जो जानते हैं ये कृष्ण क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है। आत्मा को जानने की चेष्टा करो, जो जानता ही नहीं है वो क्या करेगा, जो स्वयं बंधा हुआ है दूसरों को कैसे मुक्ति देगा। अपना पहले खोलो, इसके बाद पहले रियलाइज करो कृष्ण को, समझो जो कृष्ण क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये प्रेम कैसा होता है। घर से चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, पहले यहीं से शुरू करो, माता पिता भाई बंधु स्त्री से आरंभ करो, धीरे धीरे बढ़ो आगे, तब तक कृष्ण से प्रेम करना सीखेगा। इसलिए कहते हैं गुरु के चरणों में जाओ। कैसे गुरु के चरणों में जाओ? संसार की आसक्ति जिनमें नहीं है, बिल्कुल संसार की किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल भगवत प्रीति से ही आवश्यकता है। तो जिनको संसार से आसक्ति नहीं है, जो समस्त तत्व को जानते हैं और आनंद हृदय से ही आनंद में भरपूर है, कृष्ण की सेवा करते हैं, उनके चरणों में पहले प्रणाम करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात माने क्या, मैं कुछ नहीं, मैं बहुत ही मूर्ख हूं, मैंने आपको चरणों में सब कुछ दे दिया, आप हमको अंगीकार करके जो उपदेश है हमको उपदेश दीजिए, चैलेंजिंग मूड में नहीं जाना है, उनको पैसे रुपए से नहीं प्रसन्न किया जा सकता। हम लोग धन संपत्ति के लिए यहां पर नहीं आए, स्वामी जी धन संपत्ति के लिए नहीं आए, वो देने के लिए आए थे विश्व को, हम भी देने के लिए आए, हम लेने के लिए कुछ नहीं आए, हमको धन से मतलब नहीं है। आप लोगों की भगवान के प्रति श्रद्धा हो, संतों के प्रति श्रद्धा हो, स्वामी जी के प्रति समझिए जो स्वामी जी क्या थे, इसके लिए आए हैं। धर्म आपके पास में रहे या जिसको जरूरत है उन जरूरत लेडी पर्सों को आप अपना धन देंगे, हमारे अंदर में जो धन है संपत्ति है जो आप लोगों के पास नहीं है किसी के पास, उसको देने के लिए हम लोग आए हैं, इस चीज को समझना चाहिए। परिपाते न परिप्रश्न न, उसे परिप्रश्न करो, मैं योग्य हूं तो हमको ये बतलाइए, कृष्ण कौन थे, उन्होंने ब्रज में क्या क्या लीलाएं की, उन्होंने असुरों को मारा और भक्तों का पक्ष लिया क्यों, वो तो सबके प्रति समदर्शी हैं, उन्होंने दुर्योधन को क्यों नहीं शिक्षा दी और अर्जुन को शिक्षा दी, ये ऐसा क्यों किया, उन्होंने भेद दर्शन किया, यदि समझ में बराबर है तो उनको भी बुला करके समझाना चाहिए था, नहीं समझाया, अरे समझाया गए थे हस्तिनापुर में समझाने के लिए, माना नहीं माना उसने, कृष्ण ने कहा आधा मत दो पांच गांव दे दो, उसने कहा जे मैं नहीं मानता, सुई की नोक भी बिना लड़े हुए युद्ध भूमि में नहीं दे सकता, वो तो सुना ही नहीं, उसको क्या सुनाएंगे। इसलिए अर्जुन के माध्यम से ये दे, यदि ये ज्ञान सीखना है, रुपए के बल पर नहीं सीखा जा सकता ये ज्ञान, लाख विश्व ब्रह्मांड की संपत्ति होने पर भी नहीं देंगे गुरु, अनकंडीशनली उनको चरणों में प्रणाम करना होगा, सरेंडर करना होगा, अपने को शरणागत होना होगा, सर्वधर्मान प्रत्यज्य, गुरुदेव मैं मूर्ख हूं, मैं कुछ नहीं जानता, आप जैसा कहेंगे वैसा ही मानूंगा, यदि गीता को समझना है तो कैसे समझना है? पढ़ करके नहीं समझ सकते। यू कैन अंडरस्टैंड गीता बाई रीडिंग ओनली। सभी ने गीता तो सबको घर घर में बांट दिया, तो सभी लोग भक्त हो गए? जो छाप रहे हैं वो क्या सभी भक्त हो गए जो उसका एसेंस नहीं समझा? इसलिए ऐसा नहीं, ये तो लॉक और की में बंद है, ये भक्त लोगों के हाथ में है जो उसको समझते हैं, और सब दूसरों को देंगे। व्यास जी समझते हैं, सुखदेव गोस्वामी समझते हैं, जो भक्त लोग हैं। असुर लोग पढ़ करके भी नहीं समझ सकते, इसलिए उन्होंने बतलाया उनके चरणों में प्रणाम करो, सरेंडर करो, मैं मूर्ख, आई एम पुलिस, आई डोंट नो एनीथिंग एबीसीडी ऑफ गीता एंड भागवत। यू आर कॉजलेस मर्सीफुल, आई वॉन्ट योर मर्सी दैट आई मे लर्न सम गीता, आई नो अबाउट गीता, व्हाट इज गीता। ये देने के लिए उनके चरणों में जाओ और उनकी सेवा करो। सेवया, सेवा माने क्या? उन क्या सेवा चाहते हैं? पैसा नहीं। क्या चाहते हैं? कि उनका पैर दबाओ? नहीं। इसी ज्ञान को दूसरे से बतलाओ। मैं तुम्हें बतला रहा हूं, तुम उनको दूसरों को बतलाओ। जिनके पास में श्रद्धा नहीं उनको मत कहना, जिनके पास में श्रद्धा है उनको कहना। जो सदाचार संपन्न है, अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, उनको ये बतलाना गीता। आज वैसा नहीं उनको मत बतलाना। गीता को उन्होंने, कृष्ण ने तीन भागों में विभाग किया, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तीन नहीं है ये चीजें, एक ही है। पहली स्थिति का नाम कर्मयोग, दूसरी स्थिति का नाम ज्ञान योग और तीसरी स्थिति का नाम भक्ति। आ रहा है समझ में? आम एक कच्चा आम है, पका नहीं है, किंतु आम ही है, मैंगो। फर्स्ट स्थिति में कच्चा आम है, हरा, और जब पकने का प्रारंभ हुआ तो उसको कहेंगे आधा पका हुआ आधा कच्चा। कच्चा अभी रस नहीं आया, आम किंतु है, और पक जाने के बाद में बड़ा रसीला, बड़ा स्वादिष्ट और मधुर बन जाता है, एक ही आम। इस तरह से योग एक, पहली स्थिति का नाम कर्म योग, दूसरी स्थिति का नाम ज्ञान योग और तीसरी स्थिति का नाम भक्ति योग है। इसलिए तीन चीज नहीं, कृष्ण ने तीन चीज नहीं बदलाई। जब हम पाला आरंभ करते हैं तो कर्म योग से, जब ऊपर उठ जाते हैं तो ज्ञान योग, और तीसरी जब चल चलते हैं तब होता है भक्ति योग। योग किसको कहते हैं? यदि एक ही चीज है तो उसमें योग नहीं होगा, केवल एक है, योग नहीं होगा। कोई दूसरा है, दो, एक, चार, पांच, छह, कोई भी और संख्या होनी चाहिए तो योग होगा। एक और एक मिलकर के दो होगा, केवल एक ही है संख्या। एक हजार है, 1000 है, उसमें योग नहीं होगा। दो वस्तुएं होनी चाहिए, एक परमात्मा है, एक जीवात्मा है, इसमें योग होगा। यहां पर योग जीवात्मा के साथ में जो विद्या परमात्मा के साथ में योग कराती है उसको कहते हैं योग। पहले हम कर्म करते हैं, कर्म माने क्या? कर्म किसको कहते हैं? जो कुछ हम करते हैं तो उसको समझते हैं जी कर्म है ये। फर्स्ट वी डू, वी थिंक दैट दिस इज कर्म, बट एक्चुअली दैट इज नॉट राइट। मैं जाता हूं, आई गो, इसमें ऑब्जेक्ट कहां है? एक है कर्ता और दूसरा है क्रिया, पर इज ऑब्जेक्ट। मैं आम खाता हूं, यहां पर ऑब्जेक्ट आम है। मैं जाता हूं, इसमें कर्म नहीं है। जब हम कोई भी कर्म करते हैं अपने लिए तब उसको कहते हैं कर्म। जब निर्दोष होकर के शरीर शरीर का कर्म कर रहा, मैं आत्मा हूं नहीं करता, तो ये होगा ज्ञान। और मैं जो कुछ करता हूं भगवान के लिए करता हूं, इसका नाम हो जाएगा भक्ति। एक ही चीज। बाजार में मैं गया, एक आम लिया,
आम किस लिए लिया, मेरे बच्चे खाएंगे मैं खाऊंगा, यह कर्म हो गया। आप बाजार से गए आम लाया, का जी किस लिए लिया, मैं भगवान की सेवा करूंगा, भगवान को दूंगा प्रसाद के रूप में सब, यह भक्ति हो गई। और बिना उद्देश्य का ऐसा ही आम ले लिया, यह हो गया ज्ञान, उसमें कोई उद्देश्य नहीं है। इसमें मुक्ति संसार से हो जाएगी, ये बल्कि एक भीतर से छिपी हुई है। पहले किस कृष्ण ने कर्म योग बतलाया, माने क्या, जो कुछ भी करते हो उसका योग भगवान से रखो, तो ये तुम्हारे कर्म सब पवित्र होकर के भगवान का स्मरण होने लग जाएगा और तुम्हारे हृदय की कामना वासना सब दूर हो जाएगी। फिर तुम तत्व को जानोगे, तब फिर उनसे भक्ति करोगे। इसलिए पहला स्टेज है कर्मों का योग, जो कुछ भी खाते हो है ना, श्लोक जदस्नासी क्या पहला उसका अक्षर क्या, जब करोसी जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ भी चलते फिरते कमाते समाते हो, ये सब कृष्ण के लिए अर्पण कर दो। अर्पण करने से क्या होगा, ये कृष्ण ही उसके प्रभु हैं, मालिक है।